मोबाइल वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का प्रिंस कुमार का नमस्कार। संक्रमित व्यक्ति की छींक खांसी से हवा में फैलते हैं वायरस। यह सच है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति सांस छोड़ता है, खांसता या छींकता है, तो इससे वायरस बीमार व्यक्ति के आसपास की हवा में फैल जाते हैं। आमतौर पर ये वायरस संक्रमित व्यक्ति से एक या दो मीटर के दायरे में फैले रहते हैं। इस दायरे में जब कोई व्यक्ति आता है तो सांस के जरिए ये वायरस उनके शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए संक्रमित व्यक्ति से एक मीटर दूर रहने पर बीमार होने का खतरा कम हो सकता है। हवा में रहने के अलावा ये वायरस आसपास की सतह पर भी चिपके होते हैं। जब हम उस सतह को छूने के बाद अपने चेहरे या नाक को छूते हैं तो ये वायरस हमारे चेहरे पर फैल जाते हैं और हमारे श्वसन तंत्र में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब हम किसी सतह को छूने के बाद अपना चेहरा, नाक आदि छूने से पहले अपने हाथों को धो लेते हैं तो वायरस खत्म हो जाता है। इस प्रकार हमारे बीमार होने का खतरा भी कम हो जाता है। सार्स के संक्रमण के दौरान ऐसा देखा गया था कि हाथ धोने से संक्रमण का खतरा 55% तक कम हो गया। इसलिए कोरोना संक्रमण से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना और हाथों की सफाई इसकी रोकथाम का बेहतर तरीका है। सार्स संक्रमण के दौरान सर्जिकल मास्क को लेकर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा की गई थी। हालांकि इस विश्लेषण से इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला कि सर्जिकल मास्क समुदाय के बीच संक्रमण फैलने से रोकने में प्रभावी है, लेकिन यह मास्क अन्य उपायों के साथ स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच संक्रमण को रोकने में सहायक है। इस संक्रमण के बारे में अभी 3-4 महीने पहले ही पता चला है, इसलिए इससे संबंधित जो भी जानकारी है वह संक्रमित लोगों से ही जुटाई गई है। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से आधे में संक्रमण का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। ऐसे लोग बिना किसी लक्षण के केवल संक्रमण के वाहक होते हैं। संक्रमित व्यक्ति में से लगभग 90% हल्के बीमार होते हैं। ऐसे उन्हें 7 से 14 दिनों की अवधि में खांसी, बुखार, गले में खराश आदि परेशानियां हो सकती है। हालांकि लगभग 5 से 10% लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उनके फेफड़ों पर इसका बुरा असर पड़ता है। ऐसे लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। इनमें से 1 से 3% लोगों की मौत हो जाती है। हालांकि बीमार होने और मरने की संभावना उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। चीन और यूरोप के शुरुआती दिनों के आंकड़े बताते हैं कि 20 से 40 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में मरने की संभावना 0.05% और जो लोग 70 वर्ष से अधिक उम्र के हैं उनके मरने की संभावना 8% थी। इटली में संक्रमण में जाने गंवाने वाले की औसत आयु 80 वर्ष जबकि संक्रमित होने वाले लोगों की औसत आयु 62 वर्ष हो गई है। भारत में संक्रमण दर को लेकर अभी तक साफ तौर पर कुछ भी कहना कठिन है। भारत में अन्य देशों की तुलना में कोरोना के बहुत कम परीक्षण किए गए हैं। ऐसे में दूसरे देशों से तुलना करना कठिन है। कुछ यूरोपीय देशों में तो कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 1 लाख से भी ऊपर है, इसलिए उन देशों से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। हालांकि अभी तक भारत में जितने भी जांच हुए हैं उनमें संक्रमण की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी कम रही है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में संक्रमण दर अन्य देशों की तुलना में काफी कम है।